الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم حقوق والدین کا موضوع پڑھ رہے ہیں بہشتی زیور سے. یہ اگرچہ کہ کتاب جو ہم فالو کرتے ہیں وہ تو تسہیل بہشتی زیور ہوتی ہے، لیکن یہ موضوع جو ہے وہ انہوں نے ممنوعاً اصل بہشتی زیور جو حضرت اشرف علی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، جن کی وہ ان کی تصنیف تھی، تو اسی میں سے جو ہے نا وہ پورا کا پورا یہاں پہ نقل کیا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ ان الفاظ کی زیادہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر اعتماد بڑھ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل کا کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے عمومی طور پر ہمارے ذہن میں، لیکن جو کوئی کوئی بہت ہی زیادہ پرانا اور یعنی جس کے اوپر اتفاق ہو بڑے بڑے جید علماء کرام کا، تو ایسے شخص کی بات جو ہے نا وہ زیادہ ہماری نظروں کے اندر اہمیت رکھتی ہے، اور یہ ایک بڑی نیچرل سی طبیعی سی بات ہے. یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حقوق والدین کے بارے میں یہاں پہ بیان فرمائے تو اس میں حضرت نے جو ایک بڑی اہم بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، نا واقفیت ہوتی ہے، یعنی علم ہمارا کم ہوتا ہے، تو ہم بعض ایسے حقوق کو اپنے اوپر واجب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے ذمے واجب نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں علم حاصل کرنا جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھ سکیں. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ مختلف درجے کی چیزیں بنائی، مختلف یعنی حیثیتوں کی چیزیں بنائی، مختلف مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چیزیں بنائی ہیں، اور ہر چیز کا اپنا ایک مقام بنایا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے انسانی رشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. انسانی رشتوں میں بھی ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک جگہ ہے. تو وہ جگہ آپ کو کیسے معلوم ہوگی کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا جگہ ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم رات کو سوئیں اور رات میں جو ہے نا وہ ہمارے اوپر یہ علوم ڈاؤن لوڈ ہو جائیں. جس طرح آپ کے فون کے اندر ایپس ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں اور آپریٹنگ سسٹم ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اور میوزک ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اور تلاوتیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ یہ علوم ڈاؤن لوڈ ہو جائیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو ان علوم کو جو ہے وہ ہمیں ایکوائر کرنا ہوتا ہے، ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر حاصل کریں گے تب یہ ملیں گے، اگر حاصل نہیں کریں گے تو جاہل رہیں گے. ٹھیک ہے، اور جب جاہل انسان رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان جاہل رہتا ہے، جاہل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، عدم علم، علم کا نہ موجود ہونا، اس کو جہالت کہتے ہیں. تو جب انسان جاہل ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں گے یہ اس کا جواب. جب انسان جاہل ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیے، جب انسان جاہل ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बताएंगे तो इधर ही खड़े रहेंगे। चलिए एक जवाब तो आया, वो बाज दफा फर्ज अमल को इम्पोर्टेंस नहीं देता और नफिल को इम्पोर्टेंस देता है। अच्छा, और हुकूक की अदायगी नहीं कर पाता, वो हुकूक की अदायगी नहीं कर पाता। अच्छा, और तीसरा जवाब है कि गुनाह को गुनाह नहीं समझता। अच्छा, और शुक्र गुजार नहीं हो सकेगा। अच्छा, और जाने अनजाने में वो फैसला कर देना जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना। अच्छा, शैतान उसको आसानी से गुमराह कर सकता है। ठीक है, शैतान के वसाविस का दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी तो इम्प्रूवमेंट आई है कि अब जो है वो कितने हैं, 62 लोगों में से कम से कम दो लोगों को, 62 में से दो लोगों को शैतान याद आता है। ठीक है, पहले तो किसी को भी नहीं आता था। ठीक है, पहले तो किसी को भी शैतान याद नहीं आता था, सबको माशाल्लाह, अल्लाह के वलिया है ना, सब सब अल्लाह के वली हैं तो सबको अल्लाह याद आता है। ठीक है ना, शैतान किसी को याद नहीं आता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ना, इस दौर की बहुत बड़ा ये मसला है कि सबको अल्लाह याद आता है, शैतान याद नहीं आता। अब आप बोलेंगे इनका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं, काफिर हो गए हैं, क्या हो गया इनको कि अल्लाह याद आने के ऊपर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि गोया कि गलत बात है अल्लाह याद आना, नहीं, और शैतान याद आना जो है वो अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई अल्लाह याद आने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि देखें अल्लाह जान ताला जो है ना, ये तो काफिर को भी याद आता है, अल्लाह ताला तो काफिर को भी याद आता है। कैसे कि जब काफिर की कश्ती भंवर में फंसती है ना, उसके ऊपर मुसीबत आती है ना, तो वो अल्लाह ही को पुकारता है काफिर, और अल्लाह ताला खुद अपने कुरान मजीद में इसका जिक्र करते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा ये बात, अल्लाह ताला हमें बताते हैं, क्योंकि अल्लाह ही को पता है ना कि काफिर किसको पुकारता है। मुझे तो नहीं पता कि काफिर किसको पुकारता है, मैं तो कभी जब काफिर की कश्ती भंवर में फंसती है तो हम तो नहीं जा करके उससे पूछते कि हाँ भाई किसको पुकार रहे हो, राइट, हम तो उधर पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता कि काफिर किसको पुकारता है, तो अल्लाह ही ने खुद बता दिया कि काफिर मुझे पुकारता है। ठीक है, तो भाई अल्लाह को पुकारने का जो मामला होता है ना, वो ऐसा है कि वो तो काफिर भी अल्लाह को पुकारता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह के हुक्मों पे अमल करना ये काफिर नहीं करता। ठीक है, तो बहरहाल ये काफिर में और दूसरे लोगों में फर्क होता है, लेकिन कि वो अल्लाह के हुक्मों पे अमल नहीं करता, मोमिन जो होता है वो अल्लाह के हुक्मों पे अमल करता है। लेकिन बात ये है कि हम शैतान को भूल जाते हैं ना कि शैतान ये काम करता है, शैतान हमारे लिए हमारे हमारे नुकसान के तरीके इस्तेमाल करता है, तदबीर इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमें शैतान याद नहीं रहता, तो इस वजह से हम शैतान से हिफाजत कभी बिल्कुल बंदोबस्त नहीं करते हैं, ये असल मसला है। ठीक है, तो देखें ये बात याद रखें, जब हम जाहिल होते हैं ना, तो जाहिल होने का मतलब जुमे की मजलिस में भी समझाया जाता है कि जाहिल होने का मतलब यह है कि आपके पास इल्म नहीं होता। ठीक है, जब इल्म नहीं होता, जीरो इल्म होता है ना, तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो शैतान फिर ये करता है कि वो आपको गलत इल्म देता है, गलत इल्म देता है। गलत इल्म देने से उसका फायदा ये होता है कि जब आपको गलत इल्म मिल जाता है ना, तब आप जो है वो गलत काम करते हैं, क्योंकि काम करने के लिए इल्म होना जरूरी है, बगैर इल्म के आप कुछ नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब वो गलत इल्म दे देता है, तो आप गलत काम करते हैं, क्योंकि उसी अमल पे, उसी इल्म के ऊपर आप अमल करते हैं, तो जाहिर है वो गलत इल्म है तो आपका अमल भी गलत होगा, और जो सही इल्म होता है तो उसका क्या फायदा होता है कि इंसान सही अमल करता है। ठीक है। तो शैतान आपको जाहिल छोड़ता नहीं है, शैतान हमें जाहिल छोड़ता नहीं है, वो हमें इल्म देता है लेकिन गलत इल्म देता है, ठीक है। अब वो गलत इल्म क्या होता है, वो गलत इल्म का मतलब यही होता है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसको वो बुरा बना करके पेश करता है, जो बुरी चीज़ होती है उसको वो अच्छा बना करके पेश करता है, ठीक है। और जो चीज़ ज़्यादा अहम होती है उसको वो कम अहम बना के पेश करता है, और जो कम अहम होती है उसको वो ज़्यादा अहम बना करके पेश करता है, ठीक है ना। अब जब उसने ये गलत इल्म आपको दे दिया तो अब क्या करेंगे, अब आप यही करेंगे कि अहम चीज़ को जो है वो साइड पे रखेंगे और जो कम अहम चीज़ है उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। जो अच्छी चीज़ होगी उसको जब उसने बुरा बना के पेश कर दिया तो अब जो है वो आप अच्छी चीज़ के ऊपर अमल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो आप समझ रहे हैं कि वो आपके लिए नुकसानदेह, ठीक है ना। और जब बुरी चीज़ अच्छी बन गई तो अब आप जो है वो बुरी चीज़ के ऊपर अमल करना चाहेंगे, क्योंकि बुरी चीज़ को अब आप अपने लिए फ़ायदेमंद समझते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो इंसान का काम ये है वो सही इल्म हासिल करना, और सही इल्म किधर से मिलता है, सही इल्म जो है ना वो सही सोर्सेस से मिलता है, सही सोर्सेस से यानी सही जराए से सही इल्म मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर दूसरी चीज करने की क्या हुई, पहली चीज तो ये हुई ना कि सही इल्म हासिल करें, दूसरी चीज क्या होती है कि सही जराए तलाश करें, सही इल्म हासिल करने के लिए सही जराए तलाश करें, ठीक है। तो उसके बगैर फिर बहुत बहुत ही इंसान का नुकसान और नुकसान ही होता चला जाता है। गलत इल्म, अच्छा और क्या लिखा था ये भी हम पढ़ लेते हैं कि गलत काम को भी सही के गुमान में करता जाता है। इसमें आप शैतान का भी कहीं जिक्र डाल देना बीच में, ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल, सबने सही सही, सही जवाब दिए, लेकिन उसमें शैतान का जिक्र डालें, शैतान का जिक्र डालें, शैतान गलत काम को भी सही गुमान करवाता है। आप माने ना माने मेरी बात, लेकिन आपके लिए ये यही फायदेमंद है कि अब जो है ना वो अपने जुमलों में शैतान का जिक्र लेकर किए हैं, शैतान का जिक्र लेकर किए हैं, शैतान के जिक्र के बगैर बात नहीं किया करें इस तरह की, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता और गलतियां करता जाता है, ठीक है। शैतान, इस जुमले को इस तरह से भी रिवर्ट कर सकते हैं और करना चाहिए कि शैतान फिर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करवाता है, शैतान फिर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करवाता है और गलतियां करवाता है, ठीक है। रीवर्ड रीवर्ड योर सेंटेंसेस नाउ फ्रॉम नाउ ऑन। जाहिल रहने से हुकूक की सही अदायगी नहीं होती, बेइकरामी होती है, ठीक है। जब इंसान जाहिल रहता है तो फिर शैतान उसको हुकूक की अदायगी से रोकता है, उसको गलतफहमियों में मुब्तला करता है हुकूक के बारे में, ठीक है, और उससे फिर बेइकरामी करवाता है। ऑलवेज नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को पहचाने, अपने दुश्मन को पहचाने, अपने दुश्मन को पहचाने। अगर आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगी, मजहूल बात करती रहेंगी, जिससे जितने जुमले लिखे हैं ना सवाए दो के, जितने जुमले आप लोगों ने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे मजहूल जुमले हैं, जोहल है इनके अंदर, यानी इनके अंदर एक एक लेवल ऑफ इग्नोरेंस है इन जुमलों के अंदर, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में तो पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं, लेकिन पैसिव से बात समझ में नहीं आती, अरबी हकीकत को बयान करती है, अरबी जो है ना ये हकीकत वाली लैंग्वेज है। तो इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए मजहूल, मजहूल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और मजहूल का लफ्ज किससे निकला, जोहल से निकला, जहालत जोहल, ठीक है। तो मजहूल जुमले मत मत बोला करें, ज्यादा बेहतर हमारे लिए है, क्योंकि हम जो है ना वो हम मुब्तदी हैं, हम बिगेनर्स हैं, ठीक है। बड़े लोग मजहूल जुमला बोले तो उनके लिए बुराई नहीं है, क्योंकि उनको वो मजहूल जुमला बोल रहे हैं लेकिन उनके पास इल्म है, तो वो इल्म के साथ मजहूल जुमला बोल रहे हैं, उसमें इतना मसला नहीं है। हम चूंकि बिगेनर्स हैं ना, ठीक है, हम चूंकि कम इल्म है, कम सिन है, तो हमारे लिए जो है ना मजहूल जुमले बड़े नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह हमारे लिए, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाती हैं ना, ठीक है, तो छोटे बच्चे को जो है ना वो हिज्जे करवाती हैं, ठीक है ना, भाई हिज्जे करोगे ना तब तुम्हारा जो है वो पढ़ना ठीक होगा, अलिफ जबर आ बा बाजेर बा, तो अभी राइट, इस तरह हिज्जे करोगे। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो अब उसको हिज्जे करने की जरूरत पड़ती है, अब तो वो हिज्जे किए बगैर ही जो है वो सही सही पढ़ रहा होता है ना। लेकिन बच्चे वो कहते हैं नहीं बेटा तुम हिज्जे करके पढ़ो। हिज्जे करना पता नहीं अब आप कितनों कितनों को पता है हिज्जे करने का मतलब क्या होता है। तो छोटे बच्चों को हिज्जे करके पढ़वा क्यों करवाते हैं हिज्जे करके, क्योंकि उसके लिए ये चीज जरूरी होती है, उसके बगैर जो है ना वो गड़बड़ कर जाता है, भूल जाता है कि इसको कैसे करना था। इसी तरह से समझें ये आजिज जो है ना वो आपको जो कह रहे हैं ना कि अपने जुमलों में शैतान का जिक्र किया करें, ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको हिज्जे करने के लिए कह रहा, ताकि आपके घुट्टी में पड़ जाए शैतान से वाकफियत और शैतान से नफरत और शैतान से बचने की फिक्र, ये आपके घुट्टी में पड़ जाए, घुट्टी में पड़ जाए। ठीक है, बहरहाल मेरा काम बताना, बाकी काम आपका है और अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला समझाता है बात समझने की और अमल करने की तौफीक देता है, ये अल्लाह का काम है, हमारा ये काम नहीं है। तो हजरत ने फिर यहाँ पर ऐसी हदीसें जिक्र करी हैं कि जिनको कि हमारे मुआशरे के अंदर अब्यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, किस लिए अब्यूज़ किया जाता है? माँ बाप को हक देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का हक मारने के लिए इसको अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक हदीस हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली थी कि मेरे निकाह एक अब्दुल अब्ने रज़ियल्लाहु का वाक़िया है कि उनके निकाह में एक औरत थी और उनके वालिद हज़रत उमर फारूक उन्होंने उनको तलाक देने के लिए कहा था, तो नबी रसूल सल्लल्लाहु ने इसकी तायीद फरमाई थी। बहरहाल दूसरी हदीस है कि एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी हरगिज़ ना करो, अगरचे वो तुझे ये हुक्म दें कि अहलो अयाल और माल से अलग हो जाए। ठीक है, चले पहले तो उमर रज़ियल्लाहु उन्होंने अलग होने के लिए कहा था, है ना। पिछली हदीस क्या थी, उमर रज़ियल्लाहु कह रहे थे अलग हो जाओ अपनी बीवी से, उसको अलग कर दो, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तायद करी थी। तो ये एक एक जरा ये एक सेकंड दर्जे की बात हो गई ना, कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तो हुक्म नहीं दिया था इब्ने उमर रज़ियल्लाहु को। ठीक है, लेकिन इस वाली हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम बराह रास्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, राइट, खुद फरमा रहे हैं कि अगरचे कि वो तुम्हें हुक्म दें कि अहलो आयाल और माल से अलग हो जाओ। ठीक है ना, अब जो है ना सांसें जो है ना वो तो खूब बगले बजा रही होंगी इस वक्त, जितनी सांसें हैं ना इस क्लास के अंदर वो तो बगले बजा रही हो, जरा बहू साहबा को अब मैं टाइट करके रखूंगी, है अब मैं जो है ना वो हदीस आ गई मेरे हाथ में ना, बंदूक आ गई मेरे हाथ में, बल्कि बंदूक क्या आ गई, तोप का गोला आ गया मेरे हाथ में। ठीक है, अब जो है ना मैं बताऊंगी सास साहब, वो बड़ी दीनदार बनी फिरती हैं, बड़ी दीनदार बनी फिरती हैं, बड़ी आलिमा बनी फिरती हैं, बड़ी फाजला बनी फिरती हैं, बड़ी तहज्जुद गुजार बनी फिरती हैं, मैं दिखाऊंगी अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था। हैं, अगर मैं हुक्म दूं ना बेटे साहब को तो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक फौरन तुम्हें छोड़ देगा वो। ठीक है, तुम क्या समझ रखती हो अपने आप को, सब क्या समझती हो तुम अपने आप को। ठीक है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को, कि उन्होंने बहुओं को बचा लिया वरना तो गई थी सारी की सारी। अब मजे की बात यह कि सास साहिबा जो थी ना ये खुद भी बहू थी, राइट, बहू थी तब तो इनका फिर बेटा पैदा हुआ ना, अगर ये बहू ना बनती किसी की तो इनका बेटा किधर से आता। लेकिन अपने बहू वाले दौर को कौन याद करता है भाई, जो रात गई तो बात गई है, माजी गया तो सब गया, अब याद करने की क्या जरूरत है किसी चीज को। ठीक है, लेकिन और ये कैसे होता है, ये शैतान की ही वजह से होता है, ये ख्यालात भी और ये जज्बात भी जो है ना ये शैतान ही डाल रहा होता है सास मोहतरमा के जहन के अंदर। किस वजह से डाल रहा होता है और वो क्यों इसमें कामयाब हो जाता है, जहालत की वजह से, राइट, जहालत की वजह से, क्योंकि सास साहिबा को इल्म नहीं होता और सास साहिबा ने इल्म हासिल किया नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ना वो हदीस को इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाता है, घरों को तोड़वाता है, या घरों के अंदर लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी और टेंशन और एंग्जाइटीज और न जाने क्या किस्म के तमाशे जो है वो घरों के अंदर करके बेड़ा गर्क करवाता है घरों का। ठीक हर वक्त की एक टेंशन और साथ से बस नाराज हो गई तो अब जो है ना वो मेरा क्या बनेगा। और फिर वो बेगम साहिबा के दिल के अंदर भी तो शैतानी डालता है ना बहू साहिबा के, कि तुम अपने बचाव के फिर कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल करो, कोई दूसरे रास्ते इख्तियार करो, ताकि सास साहिबा जो है ना वो तुम्हें चलता ना कर दें किसी दिन। ठीक है, तो ये भी डाल सकता है बहू के दिल में कि तुम्हारे जो शोहर साहब है ना ये इतने ज्यादा मौलवी बने हुए हैं, तो मौलवी बनने की वजह से ये हदीस को जो है ना वो फिर रद्द नहीं कर सकेंगे, राइट? हदीस को रद्द नहीं कर सकेंगे और उनको अपनी अम्मा की बात माननी पड़ जाएगी, अम्मा के सामने जो है वो घुटने टेकने पड़ जाएंगे। तो वजह क्या है, मौलवी बने हुए बहुत ज्यादा, तो इसका एक हल ये है कि इनको जरा लेस ऑफ ए मौलवी बनाओ, राइट? इनको इनके जो है ना दीनदारी को थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाए ना उस बिल्डर, जिसको बैलेंस करना हम कहते हैं। ठीक है, ये जरा दीन दुनिया साथ साथ वाले बन जाएंगे तो फिर जो है ना ये हदीसों को इतनी अहमियत नहीं देंगे और मेरी जान बच जाएगी, राइट? ये जो मेरे सर पे तलवार लटक रही है, सास साहिबा की तलवार लटक रही है, ये तलवार लटकनी खत्म हो जाएगी मेरे ऊपर से। तो इसका क्या हल निकाला, दीन को कम करो जरा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए ये। ठीक है ना, तो इतना एक्सट्रीम होना जो है ना ये नुकसानदेह हो जाएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये शैतान डाल रहा है, शैतान डाल रहा है, और शैतान कैसे डाल रहा है, जहालत की वजह से। ठीक है, जहालत की वजह से। तो इल्म हासिल करना, काश हमारे पास समझ में आ जाए कौन सा वाला इल्म हासिल करना, हुकूक का इल्म हासिल करना, हुकूक और हुकूक की पोजिशंस का इल्म हासिल करना। ठीक है, हुकूक के मकामात का इल्म हासिल, के कौन सा हक किस मकाम पर है, ये वाला इल्म हासिल करना। डिग्रियां हासिल करना नहीं, ग्रेड्स बनाना नहीं, मार्क्स हासिल करना नहीं, चाहे वो दुनिया के हो चाहे वो दीन के हो। ठीक है ना, शैतान ने क्या किया हुआ है इस वक्त कि जिन लोगों को दीनदार बनने से नहीं रोक सका ना, तो उनको दीन के एजुकेशन के अंदर लगा दिया, दीन की एजुकेशन के अंदर। वो कौन सी वाली एजुकेशन, आलमा कोर्स, राइट? और जो है ना वो उसकी डिग्रियां और उसके जो है वो मार्क्स, और उसके बाद जो है ना वो अपने आप को बुकनानी समझती है, बुकरात समझती हैं, और फिर जो है ना अपने आप को पीर साहिबा भी समझना शुरू हो जाती हैं, राइट? पीर साहिबा समझना शुरू हो जाती हैं, पीरानी साहिबा समझना शुरू हो जाती हैं वो। ठीक है ना, गलत इल्म, ये गलत इल्म का नुकसान होता है। हुकूक का इल्म ये नहीं हासिल होता, कितनी भी बड़ी पीर बन जाए उनको हुकूक का इल्म हासिल नहीं होता, बल्कि उनको बुराई बुराई नजर आती है इसके अंदर। जहालत का ये आलम है जहालत का, राइट? क्या करें इस पर। बहरहाल, तो इस हदीस की तशरीह में हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मिरकात शरीफ में लिखा है, तो एक तशरीह किताब है हदीसों की, कि मिरकात में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुकम्मल अताअत की ताकीद और मुबालगे के तौर पर है। ठीक है, मुकम्मल अताअत की ताकीद, यानी ये ताकीद के लिए है, और इसमें जो है ना वो ताकीद करने के लिए आपको मुबालगे का, यानी जरा ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए आपको, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपको हद से बढ़ना, मुबालगे का मतलब जो है वो एक उर्दू जुबान में एक है हद से बढ़ना, लेकिन नाउज बिल्ला हद से बढ़ना ये बेअदबी वाला अंदाज है बोलना। यानी क्या मतलब, नबी अलैहिस्सलाम हद से बढ़ गए, नाउज बिल्ला, सुम्मा नाउज बिल्ला, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए इस तरह की बात सोचने से भी। ठीक है, तो मुबालगे का मतलब बस इतना ही समझ लें कि ताकीद करने के लिए इंसान को जरा बढ़ा बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा इस तरीके से बात करनी होती है। इसका जाहिरी मानी मुराद नहीं है, ठीक है, यानी जो आपको अल्फाज के जाहिर से बात नजर आ रही है ना, ये इसका मुराद नहीं है। क्या इसकी मुराद नहीं है, क्या मतलब हुआ इससे कि चीजों की जाहिर से जो है ना वो हमेशा आपको बात समझ में नहीं आती, कभी कभी जाहिरी मानी वही होते हैं जो कि असल मानी होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा जाहिरी अल्फाज जो होते हैं ना वो हकीकी मानी को बयान नहीं कर रहे होते, हकीकी मानी जो हैं वो अल्फाज के अलावा कराइन से समझ में आते हैं, जो बात बंदा ये बात कर रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है, किस माहौल में ये बात कर रहा है, किन इन्फ्लुएंसेस के तहत रह करके ये बात कर रहा है, ये सारी चीजें जब पता चलती हैं तब जो है वो अल्फाज के हकीकी मानी समझ में आते हैं। और किताब के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं जिसके अंदर कोई तशरीह नहीं है, कोई तफसील नहीं है, तो अब उस किताब के अल्फाज से आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हालात थे जिनके अंदर ये बात की गई थी, क्या प्रेशर्स थे या क्या वजूहात थी या किससे बात की जा रही थी, ये सब तो नहीं लिखा हुआ। तो आपको फिर हकीकी मानी कैसे समझ में आए, आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो फरमाते हैं कि इसका जाहिरी मानी मुराद नहीं है। वालिदैन के हुक्म की बिना पर अपनी बीवी को तलाक देना जरूरी नहीं है। ठीक है, पिछली हदीस में भी इस तरह की बात हो चुकी है और यहां पर भी कि वालिदैन के हुक्म की बिना पर अपनी बीवी को तलाक देना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगरचे माँ बाप को बीवी के तलाक ना देने से सख्त तकलीफ हो, क्यों नहीं छोड़ा, अब इसकी वजह से माँ बाप को सख्त तकलीफ हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से कभी लड़के को सख्त तकलीफ का सामना होता है और माँ बाप की शफकत से ये बईद है कि वो बेटे की तकलीफ को जानते हुए ये हुक्म दें कि वो बीवी या माल को अलग कर दे, बस ऐसी सूरत में उनका कहना मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या मतलब कि माँ बाप भी तो जज्बात का शिकार हो सकते हैं ना, जज्बात में जब इंसान आ जाता है ना तो वो फिर उसकी अकल जो होती है वो मगलूब हो जाती है। ठीक है ना, जज्बाती फैसले में, जज्बाती जज्बात की रौ में बह जाने से क्या होता है कि इंसान जो है ना वो अकल से फैसला नहीं कर सकता। अकल क्या चीज होती है, अकल का काम होता है नफे और नुकसान में तमीज करना, नफे को हासिल करना जलब मनफात जिसको कहते हैं, और नुकसान को दूर करना दफ़े मुजर्रत, मुजर्रत जिसको कहते हैं, यानी तकलीफ पहुंचाने वाले चीज को दफा दूर करना, दफ़े मुजर्रत। ठीक है, तो अकल जो है ना वो जब आपकी मغلوب हो गई तो फिर आप नुकसान वाली चीज को दूर नहीं कर पाते और नफे वाली चीज को करीब नहीं कर पाते, तो फिर आप जो है ना वो गलत फैसले कर लेते हैं। ठीक है, और इस गलत फैसले से क्या होता है कि आपको खुद भी नुकसान होता है और जिसके बारे में आप ये गलत फैसला कर रहे हैं उसको भी नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर जज्बात में आकर के माँ बाप जो है वो बच्चे को कह दें कि तुम जो है वो अपनी बीवी को छोड़ दो और जो है ना तुम अपने माल को छोड़ दो, तो इससे क्या होगा, पहले तो बच्चे का नुकसान होगा क्योंकि उसकी जब बीवी चली जाएगी ना तो फिर यानी अब एक पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर कि उसका क्या क्या नुकसान होगा, उससे माल चला जाएगा तो अब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर लिखा जा सकता है इसके ऊपर, राइट। वो नाशुक्री के अंदर पड़ सकता है, वो मायूसी के अंदर पड़ सकता है, वो गुनाह कबीरा के अंदर पड़ सकता है, वो कुफर के अंदर दाखिल हो सकता है, राइट। उसके वो अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकेगा। अच्छा, जब वो अपनी जरूरियात नहीं पूरी कर सकेगा तो अपने माँ बाप की जरूरियात कैसे पूरी करेगा, राइट। अगर उसके माल का नुकसान हो गया, माल उसके पास से चला गया, तो वो फिर माँ बाप की जरूरियात कैसे पूरी करेगा, राइट। माँ बाप के हुकूक भी जो है वो अदा नहीं कर सकेगा। लेकिन माँ बाप जज्बात के अंदर आकर के इस बात को नहीं समझ सके और उन्होंने जो है वो कह दिया छोड़ दो इसको, अलग हो जाओ अपने माल से या अलग हो जाओ अपनी बीवी से, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इस हुक्म की ताकीद के लिए होने पर करीना यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ ये भी फरमाया कि खुदा के साथ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया ना, ये भी एक हदीस मुबारक है कि खुदा के साथ शिर्क ना करो अगरचे तुम कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, यानी उर्दू उर्दू का तर्जुमा है उन अल्फाज का, कि अगरचे कि तुम जला दिए जाओ या तुम कत्ल कर दिए जाओ लेकिन अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करना। तो इस हदीस के अंदर भी इसी तरह की बात है ना कि अगरचे कि तुमको इतनी खतरनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े तब भी तुम ये वाला काम ना करना। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी हरगिज ना करना अगरचे कि वो तुम्हें ये हुक्म दें कि अहलो आयाल और माल से अलग हो जाओ, यानी इतना ज्यादा नुकसान वाले काम का भी अगरचे कि वो तुम्हें हुक्म दे। ठीक है, तो इसकी तशरीह क्या है के फरमाते हैं कि ये यकीनन ताकीद के तौर पर है, ये किसी बात की अहमियत को वाजे करने के लिए। देखो, माँ बाप का हुक्म मानना इतना अहम है, शिर्क से बचना इतना अहम है, तो ये है ताकीद। वरना ऐसी मजबूरी की हालत में कलमा कुफर कहने की इजाजत अल्लाह ताला के इरशाद वमन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमानी ही इल्ला मन उकरेहा कल्बहु, ठीक है, से साबित है। कि अगर कोई तुम्हें यानी कि कत्ल की जैसे धमकी दे और कत्ल करने वाला हो, तो तुम जो है ना उस जुबान से कलमे कुफर कह सकते हो, कलमे कुफर कहने की इजाजत है, अगर जो है वो तुम्हारे यानी जान का खतरा हो जाए, ठीक है। लेकिन दिल में तुम जो है ना वो इसको बुरा समझते हो, तो जुबान से कहना जो है उसकी इजाजत है, दिल में अगर चाहे तुम उसको दिल में तुम एज लॉन्ग एज तुम दिल में उसको बुरा समझते हो, ठीक है। तो इससे क्या पता चले, ये एक बड़ी जरा थोड़ा अल्लाह करे आप लोगों को समझ में आ जाए ये जो हजरत ने इस्तदलाल किया है इस वाली हदीस से, कि अगरचे के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इजाजत दी है कि तुम जुबान से कलमा कुफर कह सकते हो, दिल में तुम्हारी कुफर की नफरत हो, ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर जो है ना वो यानी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें कत्ल करने के लोग डर पे हो जाए, ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि तुम जो है ना वो जल जाओ और जो है वो क्या कहते हैं जला दिए जाओ या जो है कत्ल हो जाओ तुम, और फिर भी तुम जुबान से जो है वो ना कहो करने को, तुम्हारे लिए इजाजत है कि तुम कह सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से इस मामले में भी ताकीद के लिए यानी अल्लाह ताला बेस यानी नबी अलैहि वसल्लम बेसिकली कहना यही फरमा चाह रहे हैं कि शिरक करना जो है ना वो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि तुम सोचो भी नहीं उसका, ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कत्ल करवा लो, तुम जो है वो जिंदा जलवा लो अपने आप को, ये नहीं कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। उसी तरीके से माँ बाप के मामले में भी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है ना वो बीवी को छोड़ दो, तुम जो है अपने मालो आयाल को छोड़ दो, ये मकसद नहीं है। क्या लिखा आपने, क्या यहाँ बिजनेस को बदलने की जिक्र हो रही, बिजनेस को बदलने का जिक्र हो रहा या कमाना ही छोड़ देने का जिक्र जिक्र भाई, ना तो बिजनेस को बदलने का जिक्र हो रहा है ना जो है वो कमाना छोड़ देने का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे बात ये हो रही है यानी इस हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि वो तुम्हें ये कहें कि अपने माल से अलग हो, ठीक है, तो जो माल तुमने ऑलरेडी कमाया हुआ है तो उस माल को जो है ना वो तुम छोड़ दो और बस तुम किसी और के हवाले कर दो या उसको बस छोड़ करके कहीं पर चले दो, ठीक है। अब जाहिर है बिजनेस के जरिए से कमाना कमा रहे हो तो बिजनेस को जो है वो तुम छोड़ दो बस खत्म कर दो, ठीक है, या जो है वो कमाई के जरिए से नौकरी के जरिए से कमा रहे हो तो तुम नौकरी छोड़ दो, ठीक है ना, चाहे नौकरी छोड़ना या जो बिजनेसमैन होगा वो बिजनेस छोड़ेगा, जो नौकरी करने वाला होगा वो नौकरी छोड़ेगा, और जो उसके पास सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को भी जो है वो खत्म कर दो। तो माल से अलग हो जाने का मतलब जो है वो एग्जिस्टिंग माल से अलग हो जाना और माल कमाने का जो भी जरिया है आपका उस जरिए से अलग हो जाना, ठीक है। बहरहाल ये तो मकसद नहीं था इस पूरी पूरी डिस्कशन का, या आप ये देखें कि किस तरीके से माल से अलग होना, मकसद डिस्कशन का ये था कि इस किस्म का जो काम है ना ये करना बच्चे के ऊपर वाजिब नहीं होता जब माँ बाप इस किस्म का होते हैं उसको। किसी को कोई और सवाल है इस बारे में, तो बहरहाल इस पूरी की पूरी डिस्कशन का लुबे लुबाब यह है कि ये बस ताकीद के लिए है, तो इस बात को अहम जरूर समझो कि माँ बाप की अताअत करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अगर तुम्हें इस किस्म का कोई एक्सट्रीम हुक्म दे ना कि अपनी बीवी को छोड़ दो या अपने जो है वो बच्चों को छोड़ दो या जो है तुम अपने कारोबार को छोड़ दो या तुम अपने जो है वो नौकरी को छोड़ दो, तो बस अब चूंकि माँ बाप ने बात कह दी है तो इस वजह से ना ये चीज़ मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उनके हुक्म की अदात में अपनी बीवी को छोड़ दूँ या अपने माँ को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं, ठीक है, सिंपल एज दैट, ऐसा नहीं, ठीक है जी। अब इसमें किसी को एतराज हो तो पूछ कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं ये जवाब दूंगा कि मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ गया माशाल्लाह। अच्छा तीसरी हदीस, टाइम वैसे कहाँ से देखे, तो तीसरी हदीस के हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप के बारे में अल्लाह तआला का फरमाबरदार होता है तो अगर उसके माँ बाप दोनों जिंदा हों उसके लिए जन्नत के दो दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर कोई एक जिंदा हो तो एक दरवाजा खुल जाता है। अगर वालिदैन की नाफरमानी करता है तो उसके लिए दोजख के दो दरवाजे खुल जाते हैं, अगर एक की नाफरमानी करता है तो एक दरवाजा खुल जाता है। इसी हदीस में है कि एक शख्स ने अर्ज किया कि अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म ही करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि अगरचे वो दोनों जुल्म ही करते हों, अगरचे वो दोनों जुल्म ही करते, ठीक है, फिर भी तुम उनके नाफरमान करो, ठीक है। तो माशाल्लाह एक और राइट, एक और हदीस आ गई। इस हदीस की शरह में मिरकात में लिखा है, यानी मिरकात हदीस की शरह की किताब है, तो उसके अंदर जो है ना वो इस वाली हदीस की तशरीह में लिखा है कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला की अताअत करने का मतलब ये है कि उनके हुकूक की अदायगी में अल्लाह ताला की अताअत करें, उनके हुकूक की अदायगी में अल्लाह ताला की अताअत करें और उनके हुकूक अदा करें। और इसमें यह भी है कि वालिदैन की अताअत सिर्फ उनकी अताअत नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला की अताअत है जिसकी अल्लाह ताला ने खास तौर पर ताकीद फरमाई है, इसलिए उनकी अताअत अल्लाह ताला की अताअत समझ कर करनी चाहिए। ये की जुमला जो है ना वो ये है, ठीक है, कि उनकी अताअत अल्लाह ताला की अताअत समझ कर करनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यही है, जो कि आम तौर पर माँ बाप समझते हैं कि जिस तरह तुम हमें अल्लाह ताला की जैसा समझ करके हमारी अताअत करनी चाहिए, ठीक है, ये जैसे यानी जैसे कि माँ बाप जो है ना वो अल्लाह ताला की पोजीशन के ऊपर बैठे, ठीक है, तो जैसे कि अल्लाह ताला की अताअत करनी चाहिए बंदे को, वैसे जो है माँ बाप की अताअत करनी चाहिए बंदे। लेकिन इसका एक दूसरा भी मतलब बन सकता है, बल्कि दूसरा ही मतलब है इसका, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को खुदा के मुकाम पे रख दो, जिस तरह शोहर को खुदा के मुकाम पे रखना ये मतलब नहीं है शोहर की अताअत करना, उसी तरह से माँ बाप की अताअत करने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को खुदा के मुकाम पे रखो, बल्कि इसका क्या मतलब है ये तो आप बताएंगी, बल्कि इसका क्या मतलब है ये तो क्लास वालियां बताएंगी, हम बैठ करके आपके जवाब सुनेंगे, पढ़ेंगे बल्कि। चलो जी, एक और इन्होंने, क्या सेट जॉब छोड़कर बस हमारे साथ आ जाओ बोलना भी यही मकसद होगा, माल छोड़ दो? जी, बिल्कुल यही मकसद होगा, उसका एक सेट काम चल रहा है तो उसको छोड़ करके, जैसे कि आजकल बहुत ये होता है, ठीक है, स्पेशली जो है वो जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं ना बच्चे, ठीक है, तो वो होता है कि जी वह जॉब छोड़ छाड़ करके बस तुम हमारे पास आओ, ठीक है। तो देखें ये बात जो है वो पिछली हदीस के दौरान ही बल्कि करनी थी, उसकी तशरीह के दौरान ही करनी थी, लेकिन आपके सवाल की वजह से अब याद आ गई है कि ये जो सिचुएशंस होती है ना जिसके अंदर माँ बाप जो है वो जज्बाती हुक्म दे रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से जो बच्चा होता है वो भी अक्सर वो भी फिर जज्बाती रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ठीक है, वो बच्चा भी जो है वो ऐसे कोई थोड़ी के बाकायदा कैलकुलेट कर रहा है और बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं उसको जेन्युइनली बगैर किसी यानी नफसानी ख्वाहिश के, बगैर किसी नफसानी ख्वाहिश के और अपने यानी दूसरी चाहतों के बगैर वो जेन्युइनली ये बात कैलकुलेट कर रहा है कि क्या मैं अगर माँ बाप की बात मान लूंगा तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा या मेरे लिए रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा, मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा या मेरे लिए जीना नहीं मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही होती हैं, माँ बाप भी गलत जज्बात के रौ में बह करके बेटे को जो है वो कोई इस किस्म का हुक्म दे देते हैं, और बेटा भी जो है ना वो भी तो अच्छा खासा जाहिल ही होता है, सिर्फ माँ बाप जाहिल भी थोड़ी होते हैं, बेटे साहब भी तो जाहिल ही होते हैं ना। बेटे साहब कौन सा जो है वो बड़े जो है वो अताद वो यानी मुत्तकी परहेजगार और जो है वो अपनी ख्वाहिशात को दबा करके रखने वाले और जो है वो अल्लाह की रजा पे अमल करने वाले। बेटे साहब भी तो ऐसे ही होते हैं, बस वो अपनी बीवी की मोहब्बत और अपने जो है वो लाइफ स्टैंडर्ड की मोहब्बत, लाइफ स्टाइल की मोहब्बत, राइट, वो इसकी वजह से माँ बाप का हुक्म नहीं मान रहे होते हैं। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही होती हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ जहालत है। माँ बाप की तरफ भी जहालत है और औलाद की तरफ भी जहालत। तो इस वजह से जो है ना, वो अल्लाह ताला ने रसूल भेजे दुनिया में, अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, और रसूल जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो रसूलों के जो वारिस हैं मशायख, नहीं, क्योंकि इन मामलात के अंदर उलमा भी जो है ना वो गाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मशायख ही गाइड करते हैं इस तरह के मामलात के अंदर, घरेलू किस्म के मामलात, ठीक है। तो इस मामलात में इस वजह से उलमा और मशायख का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ मशायख का लफ्ज इस्तेमाल। तो अब मशायख जो होता है ना, वो फिर दोनों तरफ के हालात को देख करके और वो इस बंदे के जाती जो अहवाल हैं उनको देख करके फिर वो बताते हैं कि जी इस मामले में आपको माँ बाप की बात माननी चाहिए या इस मामले में आपको माँ बाप की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उनके पास इल्म होता है ना। माँ बाप के पास इल्म है ना औलाद के पास इल्म है। ना माँ बाप जो है वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर पाते हैं, ना औलाद अपनी जज्बात को कंट्रोल कर पाते, ठीक है। तो अब गाइड करने वाले लोग फिर ये जो है उस मामले के अंदर रहनुमाई फरमाते हैं, वो इल्म के साथ रहनुमाई करते हैं और जज्बात से मगलूब होकर के रहनुमाई नहीं कर रहे होते, बल्कि उनका इस मामले के अंदर जज्बाती लगाव या तो होता ही नहीं है या वो अपने जज्बात को जो है वो काबू करने की मेहनत कर चुके होते हैं। तो इस वजह से वो बिल्कुल एक यानी अनबायस किस्म का एक ओपिनियन दे रहे होते हैं। अच्छा, और क्या लिखा, मतलब अगर कुछ नागवार भी लगे तो सवाब की नीयत से करना, नागवार भी लगे तो सवाब की नीयत से करना। देखें इस जुमले के अंदर के इसलिए उनकी अतात अल्लाह ताला की अतात समझ कर करनी चाहिए। क्या मतलब है इस जुमले का? इसका मतलब ये है कि जिस तरह तुम दूसरे अपने मुआमलात अल्लाह ताला की अताअत के मुताबिक करते हो, या तुम्हें अल्लाह ताला की अताअत को सबसे अहम रखना चाहिए, तुम्हारी जो सबसे पहली जो जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अल्लाह ताला के हुक्मों की अताअत होनी चाहिए, राइट। असल चीज क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अल्लाह ताला का हुक्म सिर्फ माँ बाप के मामले में तो नहीं मानना है ना, राइट, सिर्फ माँ बाप के मामले में तो नहीं अल्लाह का हुक्म मानना है ना। अल्लाह का हुक्म तो हर चीज के अंदर मानना है ना, राइट। असल चीज तो अल्लाह ताला के हुक्मों की अताअत है। तो अगर ऐसा हो कि तुम बाकी सारी जिंदगी तुम्हारी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ते हुए गुजर रही है, बल्कि माँ बाप खुद तुम्हें जो है वो इस लाइन के ऊपर चला रहे हैं, इसी तरीके से तुम्हें जो है वो उन्होंने बाल पोस के जवान किया है अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ तोड़ करके, राइट। अल्लाह ताला के हुक्मों की कोई वक़त नहीं है तुम्हारी नजर के अंदर। अब जो है ना वो एक माँ बाप के मामले के अंदर ये आकर के डिमांड करना कि देखो तुम हमारा हुक्म मानो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हमारा हुक्म मानो क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो नो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अल्लाह ताला का हुक्म सिर्फ माँ बाप के मामले में नहीं है, अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो बीवी और बच्चों के मामले में भी है, अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो कमाई के मामले में भी है। अल्लाह ताला के दीन तो हमें हर हर चीज के अंदर रहनुमाई प्रोवाइड करता है ना, सिर्फ माँ बाप के मामले में तो रहनुमाई प्रोवाइड नहीं करता ना। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर क्या ये दीन को अब्यूज किस तरीके से किया जा रहा होता है कि जब मेरा हक आता है ना वहां पर अल्लाह का हुक्म जो है ना वो सबको याद रहता है, ठीक है ना, मेरा हक, उसके लिए उनको हदीसें भी याद आएंगी, उसके लिए उनको आयात भी याद आएंगी, उसके लिए उनको अकवाल भी याद आएंगे, उसके लिए उनको सब कुछ याद आएगा। और जहां पर दूसरे हुकूक बनते हैं, अल्लाह का हक दूसरे मामले के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम का हक, राइट, और दूसरे लोगों जिनका कि अल्लाह ने हक दिया है, वहां पे अल्लाह का हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं है, खबरदार जो तुमने अल्लाह का हक माना या अल्लाह ताला का हुक्म माना, अल्लाह ताला की इताअत करी। ठीक है, तो इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को उठा करके अल्लाह के मुकाम पे बिठा दो, ये जुमले का मतलब नहीं है। बल्कि जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह का जो मकाम है ना, तो उस मकाम को अपने सामने रखो और अल्लाह के हुक्मों की अताअत को अपने ऊपर हर मामले के अंदर लाजिम समझो, और हर मामले में अल्लाह के हुक्म की अताअत की कोशिश करो, माँ बाप के मामले में भी अल्लाह की अताअत की कोशिश। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।